इशिका इस वक्त हॉस्पिटल में थी। अभिमन्यु की सर्जरी कामयाब रही थी। इशिका को बस अभिमन्यु को देखने की जल्दी लगी हुई थी। वो खुद को डिसइन्फेक्ट करने के लिए चेंजिंग रूम में जा रही थी कि तभी डॉक्टर रायचंद ने इशिका को अपने केबिन में बुलाया। वो काफ़ी सस्पिशियस तरीके से बात कर रहे थे। उन्हें इशिका के साथ कुछ पुराने हिसाब किताब करने थे। इशिका डॉक्टर रायचंद के साथ जाने के बजाय केशव की तरफ देख रही थी। केशव ने पलके झपकाकर उसे जाने को कहा और फिर धीरे से बोले, मैं यहाँ हूँ, तुम जाकर डॉक्टर से बात कर लो, हो सकता है कि वो अभिमन्यु की हेल्थ को लेकर कुछ बताना चाहते हों। लेकिन उनकी बातों से लगा नहीं कि वो अभिमन्यु की हेल्थ के बारे में बात करना चाहते हैं। मिस्टर सिंघानिया, प्लीज़ आप यहीं रहिएगा, मैं आती हूँ। केशव ने उसकी बात पर हामी भरी। इशिका जल्दी से डॉक्टर के पीछे गई। डॉक्टर रायचंद उससे आगे निकल चुके थे, लेकिन एक वार्ड बॉय की हेल्प से वो उनके केबिन में पहुंच गईं। जैसे ही वो अंदर गईं, तब डॉक्टर रायचंद वहां नहीं थे। शायद वो चेंज करने के लिए गए थे। डॉक्टर रायचंद की बातों से लग रहा है कि वो काफ़ी नाराज़ हैं। शायद मैंने उनके रिसर्च पेपर और प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया था, इसी वजह वो गुस्सा होंगे। लेकिन आज उन्होंने अभिमन्यु की सर्जरी करके जो हेल्प की है, उसके बाद मैं उन्हें किसी चीज़ के लिए मना नहीं करने वाली हूँ, इशिका ने मन ही मन कहा। इशिका वहीं पर खड़ी होकर उनके आने का इंतज़ार कर रही थी। लगभग 10 मिनट बाद डॉक्टर रायचंद चेंज करके आ चुके थे। अब उन्होंने मास्क भी नहीं लगा रखा था। डॉक्टर रायचंद उम्र में लगभग 30 साल के आसपास थे। लगभग 6 फीट के आसपास हाइट और शार्प फेशियल फीचर के साथ वो हैंडसम लगते थे। वहीं डॉक्टर रायचंद ने भी इशिका की तरफ देखा। वो जिन हालातों से निकल कर आई थी उससे काफ़ी बिखरी हुई सी लग रही थी। पर कहते हैं, खूबसूरती किसी साथ सज्जा की मोहताज नहीं होती, वही इशिका के साथ था। इशिका को देखकर डॉक्टर रायचंद ने सिर हिलाया। मन ही मन वो भी उसकी खूबसूरती की तारीफ किए बिना नहीं रह सके, लेकिन उनके चेहरे के भाव काफ़ी न्यूट्रल थे। डॉक्टर रायचंद ने इशिका को बैठने का इशारा किया। इशिका ने वहां लगी नेम प्लेट पर उनका पूरा नाम देखा, डॉक्टर पार्थ रायचंद। इशिका उनके सामने बैठते ही अपनी सफाई में बोली, शायद पास्ट में जो भी हुआ आप उसके बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, मेरे पास आपके रिसर्च पेपर नहीं पहुंचे थे, इस वजह से वो छूट गए होंगे। पार्थ इशिका के सामने बैठे हुए काफ़ी गौर से उसे देख रहा था। इसका इस तरह चुप रहना और इशिका को एकटक देखना उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल कर रहा था। इशिका ने अपने बालों को कान के पीछे किया। वो कुछ बोलती उससे पहले अचानक पार्थ ने भौहें उठाकर कहा, लेकिन उस पर आपके सिग्नेचर किए हुए थे और साफ साफ रिजेक्ट लिखा हुआ था, फिर आप कैसे कह सकती हैं कि वो आप तक पहुंचे ही नहीं थे, डॉक्टर अनामिका? फिर हो सकता है कि आपके प्रोजेक्ट में कुछ कमी रही होगी, इशिका ने सीधे सीधे कहा। तो तुम मेरे अंदर कमी निकाल रही हो, जो थोड़ी देर पहले अपने हस्बैंड को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, पार्थ ने उसे घूरते हुए कहा। दोनों सिचुएशन अलग है, आपने मेरे हस्बैंड की जान बचाई, उसके लिए मैं आपके एहसानमंद रहूंगी। रही बात कुछ भी करने को तैयार होने की, तो अगर आपके रिसर्च पेपर में कोई कमी है तो उसे पूरा कीजिए, फिर शायद आपका प्रोजेक्ट पास हो जाए। दूसरी बात, जब मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं आपकी हेल्प करूंगी, तो अगर आपके रिसर्च पेपर में कोई कमी होगी तो मैं उसे ठीक करने में आपकी ज़रूर मदद करूंगी, इशिका ने काफ़ी सपाट लहजे में कहा। वो अपने काम के साथ भी बेईमानी नहीं कर सकती थी। इशिका की ऑनेस्टी देखकर डॉक्टर पार्थ कहीं ना कहीं इम्प्रेस हुए, पर एक बार फिर उन्होंने अपने चेहरे से कुछ जाहिर नहीं किया। उनका बिहेवियर काफ़ी मिस्टीरियस लग रहा था। इशिका आगे इस बारे में बोलना चाहती थी, पर तभी डॉक्टर पार्थ ने उसी रहस्यमयी अंदाज के साथ कहा, आपके हस्बैंड अब बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ लाने से पहले उनका फर्स्ट एड काफ़ी सही तरीके से हो गया था, तभी उनकी जान बच गई और ज़्यादा ब्लड लॉस भी नहीं हुआ। वैसे भी बुलेट ज़्यादा अंदर तक नहीं गई थी, एक हफ्ते के अंदर उन्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा। क्या मैं पहले उन्हें यहाँ से लेकर जा सकती हूँ डॉक्टर? हम उनकी हेल्थ का पूरा ख्याल रखेंगे, इशिका ने पूछा। बिल्कुल नहीं, वो एक हफ्ते इसी हॉस्पिटल में रहेंगे, तब तक आप मेरे प्रोजेक्ट में आ रही कमियों को दूर करेंगी, पार्थ ने सीधे सीधे अपनी शर्त रखते हुए कहा। इशिका ने गहरी सांस ली और उसकी बात पर हामी भरी। ना चाहते हुए भी वो मान गई। पार्थ ने बिना कुछ बोले इशिका को वहां से जाने का इशारा किया। इशिका वहां से उठकर जाने लगी। उसके कुछ कदम आगे बढ़ने पर पार्थ ने पीछे से कहा, वैसे डॉक्टर आप जानती हैं ना कि कई बार रिसर्च करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, अगर मेरे प्रोजेक्ट में एक हफ्ते से ज़्यादा का टाइम लग गया तो ऐसी सिचुएशन में आपके हस्बैंड को डिस्चार्ज नहीं मिलेगा, और ये हॉस्पिटल मेरा है, यहाँ मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होने वाला, उम्मीद है कि इस एक हफ्ते में तुम मेरा काम कर दोगी, इशिका ने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे, पार्थ सीधे सीधे उसे धमकी दे रहा था। इशिका के चेहरे के भावों को समझते हुए पार्थ ने कंधे उचकाकर कहा, धमकी नहीं दे रहा, बस अवेयर कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि अपने पति की देखभाल करने के चक्कर में तुम मेरे प्रोजेक्ट को अंडर एस्टिमेट कर दो। मैं उसे एक हफ्ते में पूरा कर दूंगी, इशिका ने जवाब दिया। इट बेटर बी, पार्थ बोला। इसके बाद आगे उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई और इशिका वहां से चली गई। वहीं उसके जाते ही पार्थ ने टेबल पर रखा पेपर वेट लिया और अपने हाथ में घुमाने लगा। अचानक ही उसके चेहरे के भाव बेहद सर्द हो गए थे। अभिमन्यु राजवंश, हमारी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन इस तरह मुलाकात होगी इसकी उम्मीद नहीं थी। लगता है हमारी किस्मत में एक दूसरे को जोड़ने के लिए एक कड़ी काफी नहीं है, जो उसने दूसरी कड़ी को भी हमारे बीच भेज दिया, पार्थ ने कोल्ड वॉइस में कहा। उसकी आंखों के सामने इशिका का चेहरा घूम रहा था। पार्थ की बातों से साफ था कि वो अभिमन्यु को पहले से जानता था। कारण क्या था और किस्मत कैसे एक दूसरे को जोड़ती थी, ये तो पार्थ ही जानता था, या कुछ राज ऐसे थे जो वक्त के पन्नों में सिमट कर रह गए थे। वहीं दूसरी तरफ इशिका डॉक्टर पार्थ के केबिन से सीधे चेंजिंग रूम में गई। चेंज करने के बाद वो आईसीयू में जाने लगी। अभिमन्यु को शिफ्ट कर दिया गया था। हालांकि अभिमन्यु को अभी भी होश नहीं आया था, इशिका उसके पास खड़ी अभिमन्यु के चेहरे को देख रही थी, जो इस वक्त काफी शांत नजर आ रहा था। इशिका की पलकें भीगने लगी थी। अनजाने में इशिका का हाथ उसके पेट पर चला गया। वो भारी आवाज में बोली, बस एक हफ्ते की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। फिर शायद हम भी बाकी लोगों की तरह नॉर्मल जिंदगी जी पाएंगे। देखना, हमारा बच्चा हमारे लिए गुड लक लेकर आएगा। इसके बाद हम कभी दूसरे से अलग नहीं होंगे। इसके आने के बाद हम दोनों का रिश्ता और गहरा हो जाएगा। इशिका ने अपने दूसरे हाथ से अभिमन्यु का हाथ पकड़ा और उसे कसकर पकड़ लिया था। उसे इसे एक हफ्ते के जल्द से जल्द बीतने का इंतजार था, जहां डॉक्टर पार्थ का काम करने के बाद वो आसानी से अभिमन्यु को वहां से लेकर जा सकती थी। वहीं दूसरी तरफ उर्वशी नकुल के साथ वापस गोवा पहुंच चुकी थी। इस वक्त वो अपनी गाड़ी में अकेले कहीं जा रही थी। अक्सर उर्वशी बिना ड्राइवर के कहीं नहीं जाती थी, लेकिन आज वो खुद ड्राइव कर रही थी। इसका मतलब साफ था कि वो नहीं चाहती थी कि कोई इस बारे में जाने कि वो कहां जा रही है। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी मेंटल असाइलम के आगे आकर रुकी। उर्वशी इधर उधर देखते हुए अंदर पहुंची। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। अंदर आते ही एक नर्स ने धीमी आवाज में उससे कहा, मैडम आपको काफी सावधानी से उनसे मिलने के लिए जाना होगा। ऐसा लग रहा है कोई जानबूझकर ये चाहता है कि वो ठीक ना हो। उस पर पूरी निगरानी रखी जाती है और ना ही किसी को उससे मिलने दिया जाता है। वो पागल नहीं है, उर्वशी ने सख्ती से कहा।
हाँ जानते हैं, पर पिछले कुछ महीनों से वो यहीं पर है। ये जगह ऐसी है कि यहाँ कोई एक हफ्ता भी गुजार ले तो अच्छा खासा इंसान पागल हो सकता है, नर्स ने दबी आवाज में कहा। उर्वशी ने उसकी तरफ बोरियत भरे लहजे में देखा और एक चेक उसके हाथ में थमा दिया। उसमें लिखी रकम देखकर नर्स की आंखों में चमक आ गई थी। उसने उर्वशी को अपने पीछे आने का इशारा किया। वो काफी सावधानी से उसे आगे लेकर जा रही थी। उसे कमरे के बाहर छोड़ने से पहले नर्स ने उसे हिदायत देते हुए कहा, ध्यान रखिएगा कहीं वो आप पर हमला ना करे, वैसे भी वो अपने पास किसी को भी नहीं आने देती। उर्वशी ने हाँ में सिर हिलाया और उसे वहां से जाने को कह दिया। उसने एक नज़र सामने मौजूद कमरे की तरफ देखा और मन ही मन कहा, कभी सोचा नहीं था कि मैं तुमसे यहाँ मिलने के लिए आऊँगी और तुम मेरी आखिरी उम्मीद साबित होगी। जो भी हो, तुम्हें यहाँ से बाहर निकालकर मुझे अपनी मुसीबतें कम करनी ही होंगी, फिर चाहे उसका अंजाम कुछ भी क्यों ना हो। उर्वशी अच्छे से जानती थी कि वो जो करने जा रही है वो सही नहीं है, फिर भी अपने फ़ायदे के लिए उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उर्वशी ने अपने कदम आगे बढ़ाए और वो कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। वो एक जेल की तरह बना हुआ कमरा था, ताकि मिलने वाले लोग दूसरी तरफ आराम से मिल सकें और पेशेंट उन पर हमला भी ना करें। कमरे की लाइट डिम थी, जहां पर एक लड़की बिखरे बालों के साथ जमीन पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर उसके बाल फैले थे। आयशा, उर्वशी ने तेज आवाज में कहा। हाँ, वो आयशा से मिलने के लिए आई थी और इस वक्त उसके इरादे नेक तो बिल्कुल नहीं थे। उर्वशी आयशा से मिलने के लिए आई है तो जरूर कोई कांड ही करेगी। चलिए अगले पार्ट पर मिलते हैं। वैसे पार्थ के कैरेक्टर को देखकर आपको क्या लग रहा है, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, और अभिमन्यु और उसके बीच में क्या कड़ी हो सकती है जो उनकी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है?